9 अगस्त दिन बृहस्पतिवार, कार्यक्रम है दिन भर। मोहनलाल शर्मा का नमस्कार। राज्यसभा में एनडीए ने दी विपक्ष को मात, हरिवंश नारायण सिंह बने उपसभापति।
एज पर दी वोटिंग आईज 125, नोस 105, द मोशन इज कैरीड। आई देयरफॉर डिक्लेयर दैट श्री हरिवंश हैज बीन चूजन एज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा।
बताएंगे कि कैसे एक पत्रकार राज्यसभा का उपसभापति बन गया। उत्तरी यमन में हवाई हमलों में एक स्कूली बस निशाना बनी, कम से कम 29 बच्चों के शव मिले।
The ICRC supported hospital that has been receiving dozens of dead and wounded.
भारतीय सिखों के चीन में जा बसने की कहानी और आपकी राय भी होगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। एनडीए के उम्मीदवार और जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को मतदान के जरिए आज राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया। उन्हें 125 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार बीके हरि प्रसाद को 105 वोट मिले। विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी यमन में स्कूल बस पर हुए हमले के कारण 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई घायल हैं। सूत्रों का कहना है कि यमन सरकार के समर्थन वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने स्कूल वाहन को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस ने कहा है कि अधिकतर मारे गए बच्चे हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है। वहीं हूती विद्रोहियों ने कहा है कि 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। अमेरिका के नए प्रतिबंधों की निंदा करते हुए रूस ने कहा है कि इंग्लैंड में पूर्व रूसी जासूस पर नर्व एजेंट हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बेहद निचले स्तर पर जा चुके द्विपक्षीय संबंधों को अमेरिका और नुकसान पहुंचा रहा है। प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस भी इसी तरह की प्रतिक्रिया पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि रूस पर आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किए गए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी के सांसद विताली मिलोनोव ने बीबीसी से कहा, ये एक देश को दंडित करने का एक प्रभावी प्रयास है और क्योंकि ये देश उनके मानकों के अनुसार फिट नहीं बैठता है। इसका स्क्रिपल या किसी और हत्या या किसी आतंकी घटना से संबंध नहीं है, क्योंकि आप अपनी जांच को हमारे साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं है। ये थे एक रूसी सांसद विताली मिलोनोव के शब्द। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तर पूर्वी सीरिया के इडली प्रांत से लाखों लोगों के विस्थापित होने का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस जगह पर अलेप्पो और गूटा से आए आंतरिक शरणार्थी मौजूद हैं। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख जैन इगलैंड ने कहा कि उन्हें रूस, तुर्की और ईरान ने आश्वासन दिया था कि वे विद्रोहियों के कब्जे वाले इडलीब में लड़ाई से बचने की कोशिश करेंगे। जैन इगलैंड ने कहा कि उन्हें आशा है कि राजनयिक और सैन्य दूत किसी रक्तपात से बचने के लिए कोई न कोई समझौता करेंगे, हालांकि वो तुर्की से कहेंगे कि नागरिकों के भागने के लिए सीमा खोली जाए। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अर्जेंटीना में सीनेटरों ने पहले 14 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देने वाले विधेयक को खारिज करने के लिए बेहद करीबी हाशिए से मतदान किया है। रोमन कैथोलिक चर्च ने इस प्रस्ताव के खिलाफ सख्त अभियान चलाया था। अर्जेंटीना में हालिया कानून के हिसाब से केवल बलात्कार या महिला की जान खतरे में पड़ने पर ही गर्भपात की अनुमति दी जाती है। बिल के समर्थन और उसके खिलाफ में भी लोगों ने प्रदर्शन किए। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर कुछ लोगों ने अपनी निराशा ऐसे जाहिर की। यहाँ इतिहास बनाने का एक मौका था और हम उसी सिस्टम को दोष देना चाहते थे जो हमें नुकसान पहुंचा चुका है। मैं जा रही हूँ और मैं बेहद निराश हूँ और मुझे दुख हुआ है कि जो लोग हम पर शासन करते हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि हम क्या चाहते हैं। ये थे अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारियों के शब्द। प्रांतीय खोज और बचाव एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप पर आए भूकंप में 230 लोगों की मौत हुई है। रविवार को 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद 5.9 तीव्रता का भी भूकंप आया। इसके बाद 100 से अधिक हल्के हल्के भूकंप आए। भूकंप के कारण 1,50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। जिम्बाब्वे के विपक्षी राजनेता टेंडाई बिटी के वकीलों ने कहा है कि बिटी को हरारे के केंद्रीय पुलिस स्टेशन में रखा गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। रेडियो के साथ साथ आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं और मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में नए सभापति हरिवंश नारायण सिंह बन गए हैं। भारत की ये बड़ी खबर, इसका जिक्र हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन पहले बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। उत्तरी यमन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हुए हवाई हमलों में एक स्कूली बस निशाना बनी है और इसमें मरने वाले ज्यादातर बच्चे हैं। हमले के वक्त साद प्रांत के बाजार से बस गुजर रही थी और बच्चों से भरी हुई थी। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का यमन सरकार का समर्थन हासिल है और हूथी समूह की ओर से जारी बयान के मुताबिक 43 लोगों की मौत हो गई है। उनके मुताबिक इसमें मारे गए लोगों में अधिकतर की उम्र 10 साल से कम थी। सहायता समूह रेडक्रॉस की एक प्रवक्ता ने कहा,
The ICRC-supported hospital in Saada has been receiving dozens of dead and wounded.
अस्पताल में मृत और घायल लोगों को लाया जा रहा है। मेडिकल टीम के मुताबिक अस्पताल में अब तक 29 बच्चों के शव लाए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है। इसके अलावा 48 घायल लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 30 बच्चे हैं। ये थे रेडक्रॉस की प्रवक्ता के शब्द। हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन सरकार का समर्थन करने वाले गठबंधन ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है। उनके प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मलकी ने अपने बयान में कहा कि यह हवाई हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से था और उनका कहना था कि यह हमला हूती विद्रोहियों के बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में किया गया। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार का कहना है कि उसने कभी भी जानबूझकर आम लोगों को निशाना नहीं बनाया है। वहीं मानवाधिकार समूहों ने गठबंधन की सरकार पर आरोप लगाया है कि वह स्कूल, बाजार, अस्पताल और आवासीय क्षेत्र को निशाना बना रही है। उसका कहना है कि यह सब कुछ पिछले 3 सालों से जारी है। यमन में जारी गृह युद्ध में साल 2014 के बाद करीब 10,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 2/3 आम नागरिक थे। इस गृह युद्ध की वजह से यमन में भुखमरी के हालात हैं और दसियों लाख लोग बेहद मुश्किल में जीवन जी रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय खबर के बाद चर्चा भारत की। भारतीय सदन के उच्च सदन राज्यसभा में आज एक बार फिर से एनडीए और कांग्रेस आमने सामने थे। मामला था उपसभापति का चुनाव। एनडीए की ओर से जहां जनता दल यूनाइटेड सांसद हरिवंश नारायण सिंह उम्मीदवार थे, तो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे बीके हरिप्रसाद। इस चुनाव में हरिवंश नारायण सिंह ने जीत हासिल की। ये जीत एनडीए गठबंधन के लिए बड़े मायने रखती है, क्योंकि राज्यसभा में उसे बहुमत हासिल नहीं है। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
Ayes 125, Noes 105. The motion is carried. I therefore declare that Sri Hariwansh has been.
सभापति वेंकैया नायडू के ऐलान के साथ ही राज्यसभा के नवनिर्वाचित उपसभापति को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई के बाद नए उपसभापति के पेशे का जिक्र किया।
हरिवंश जी उस कलम के धनी है जिसने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है।
तो कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने उपसभापति को पद के गरिमा की याद दिलाई।
लोकतंत्र में इलेक्शन होते हैं हर पद के लिए, लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं, उन पर चुन के आने के बाद वो नेता, वो लीडर एक पार्टी का, एक पक्ष का नहीं होता, एक समुदाय का नहीं होता है।
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, हालांकि हमने बात की शुरुआत क्रिकेट से इसकी तुलना करके की है, लेकिन मैं फिर भी इस जाल में नहीं फंसूंगा और किसी दो अर्थी शब्द के इस्तेमाल से बचूंगा। लेकिन चूंकि बात क्रिकेट की है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों खिलाड़ियों ने सेंचुरी बनाई। ये थे टीएमसी नेता के शब्द। लेकिन एक विचार ये है कि विपक्ष, जिसे 245 सदस्यों वाले सदन में बहुमत हासिल है, इस मैच को हारने के अलावा और भी बहुत कुछ हारी है। कई ऐसे दल जो एनडीए गठबंधन में नहीं है, वो सरकार के साथ गए। राजनीतिक विश्लेषक रशीद कुदवई का मानना है कि कांग्रेस संसाधनों का इस्तेमाल करने से चूक गई।
राज्यसभा में शरद पवार जैसे लोग मौजूद हैं, अहमद पटेल जिन्होंने पिछले साल गुजरात में बड़ा कांटे का राज्यसभा का चुनाव खुद जीता था, ऐसे लोगों का उन्हें लाभ उठाना चाहिए था। ममता बनर्जी की पार्टी से, बीजू जनता दल की पार्टी से, टीडीपी से, तमाम ऐसे लोगों से सहयोग लेना चाहिए था। एक पूरी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। देखिए, अब लोकसभा चुनाव आने वाला है और विपक्ष का एक महागठबंधन की बड़ी हवा है, लेकिन वो हवाई हवा है, जमीन में नहीं है।
न सिर्फ आंध्र प्रदेश की वाई वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना के टीआरएस बल्कि कश्मीर की पीडीपी और आम आदमी पार्टी सदन में मौजूद नहीं रहे, जिसने विपक्ष के वोटों को कम कर दिया। कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि राहुल गांधी उनसे खुद बात करें, लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं ने ऐसा होने नहीं दिया। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि इससे बीजेपी सहयोगी दलों को ये संदेश भेजने में सफल रही है कि वो उनकी बातें पहले से अधिक सुनेगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी जो एक समय शिवसेना जैसे अपने पुराने सहयोगियों की बात सुनने को तैयार नहीं थी और अब सुन रही है, तो क्या मोदी का जादू कम हो रहा है? फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति बन गए हैं, लेकिन उनका संसदीय करियर सिर्फ 4 साल पुराना है, पर पत्रकार के तौर पर उन्होंने लंबी पारी खेली है। उनकी पहचान देश के बड़े पत्रकार के तौर पर रही है। कौन है ये हरिवंश नारायण सिंह, सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
हरिवंश इस मामले में भाग्यशाली हैं कि उनका जन्म उस सिताब्दियारा गांव में हुआ जहां कभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जन्मे थे। हरिवंश हमेशा इस पर गर्व करते रहे और जेपी का गांव मेरा गांव शीर्षक उनका लेख किसी वक्त काफी लोकप्रिय भी हुआ। आज राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर चुने जाने के बाद उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में ही उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसे अपने गांव सिताब्दियारा की चर्चा की और एक प्रसंग के बहाने बताया कि उनकी जिंदगी पर जेपी के आदर्शों का कितना असर है।
मैंने कहा कि जिस गांव के हम सब हैं उसमें आने जाने का रास्ता नहीं होता था। जब बाढ़ आती थी तो अपने अपने घरों में हम लगभग कैद हो जाते और हमने समुद्र बहुत बाद में देखा, पर जो बाढ़ का प्रवाह देखते थे तो लगता था समुद्र। हमने रोशनी तो बहुत वर्षों बाद देखी, बिजली की क्या होती है, दिए में हम सब ने अपना जीवन शुरू किया।
हरिवंश की पहचान भारत के सुलझे हुए पत्रकारों में होती है। वे हिंदी के उन चुनिंदा संपादकों में से एक रहे हैं जिनकी ख्याति दूसरी भाषाओं के पत्रकारों में भी समानांतर तौर पर थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं था। महज 500 रुपए की मासिक तनख्वाह से अपना करियर शुरू करने वाले हरिवंश ने करीब 3 दशक तक गंभीर पत्रकारिता की और साल 2014 में बिहार से जदयू के कोटे पर राज्यसभा सांसद चुने जाने तक वे बिहार, झारखंड और बंगाल से छपने वाले अखबार प्रभात खबर के प्रधान संपादक रहे। इस दौरान उन्होंने कई उल्लेखनीय प्रयोग किए और पत्रकारिता में एक्टिविज्म के लिए जगह तैयार की। प्रभात खबर रांची के स्थानीय संपादक विजय पाठक कहते हैं कि वे हमेशा स्पेसिफिक रहे।
मुझे एक प्रकरण याद है, मुझे लगता है 92 का संभवतः मामला होगा। प्रभात खबर उस समय शुरुआत के दिनों में था, पर अचानक हॉकरों ने प्रभात खबर लेना बंद कर दिया। मुझे याद है हरिवंश जी सड़क पर उतरे और हम लोग सब साथ में बिरसा चौक और शहर के कई इलाकों में जाकर हरिवंश जी और हम लोग पूरी टीम अखबार बेचते थे, और ये दिखाता है जो वो संस्थान को लेके और पूरी टीम को लेके कितनी प्रतिबद्ध थे।
अपने करियर की शुरुआत उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के ट्रेनी जर्नलिस्ट के बतौर की थी। बाद में वे तब के बॉम्बे चले गए और वहां धर्मवीर भारती के संपादन में निकलने वाली पत्रिका धर्मयुग में काम किया। कुछ वक्त के लिए उन्होंने पत्रकारिता छोड़ी और साल 1981 से 1984 तक बैंक ऑफ इंडिया के लिए दक्षिण भारत में काम किया। महज 3 साल बाद वे पत्रकारिता की दुनिया में वापस लौट आए। उन्होंने आनंद बाजार समूह की चर्चित पत्रिका रविवार में बतौर सहायक संपादक नौकरी शुरू की और कलकत्ता में सपरिवार रहने लगे। साल 1989 में वे रांची से छपने वाले तब के मृत प्राय अखबार प्रभात खबर के संपादक बने और महज 400 कॉपियों की प्रसार संख्या वाले अखबार को देश के 10 सबसे बड़े अखबारों में शामिल कराकर अपनी पहचान बनाई। उनके साथ प्रभात खबर में काम कर चुके फिल्मकार अविनाश कहते हैं कि अपनी बुलंदियों के बावजूद हरिवंश हमेशा विनम्र बने रहे।
ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं जो ये जाहिर करते हैं कि हरिवंश जी भले ही पद में, समझदारी में, चिंतन में, दर्शन में बहुत ऊंचे उठते गए, लेकिन अपनी व्यावहारिकता में, अपनी सादगी में वो हमेशा जमीन पे खड़े रहे, तो ये एक बड़ा कमाल का पक्ष था उनका।
कभी किस्त पर फ्रीज खरीदने वाले हरिवंश ने अपने संपादन के दौरान परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। वे कई राजनेताओं के करीबी रहे। साल 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें अपना अतिरिक्त सूचना सलाहकार बनाया और वे उनके इस्तीफा देने तक इस पद पर रहे। बचपन में अजय नाम से जाने जाने वाले हरिवंश अब राज्यसभा का संचालन करेंगे, यह उनके लिए गौरव की बात है। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
आज महाराष्ट्र में कुछ मराठा संगठनों ने आरक्षण की मांग को लेकर फिर से महाराष्ट्र बंद करवाया। हालांकि कार्यकर्ताओं ने बंद के दौरान हिंसा, पथराव या आगजनी को न करने की हिदायत दे रखी थी, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर घटनाएं घटी। अकोला के देउल गांव में एक दूल्हा दुल्हन की जोड़ी ने मंडप की बजाय आंदोलन के बीच में शादी की। सुनिए संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट।
9 अगस्त को मराठा आरक्षण के लिए महाराष्ट्र बंद का आंदोलन हुआ। इस दौरान अकोला के करीब देउल गांव के एक दूल्हा दुल्हन ने ऐसी शादी की जो भुलाई नहीं जा सकती। वे मंडप में नहीं बल्कि चौराहे पर आए, जहां मराठा कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। उन्होंने घोषणाएं दी, फिर मराठी रिवाज के तहत एक दूसरे को वरमालाएं पहनाई, मानो कुछ देर के लिए आंदोलनकारी और बंदोबस्त वाली पुलिस बाराती बन गए। बीबीसी ने बात की दूल्हे राजा अभिमन्यु अढ़ाऊ से।
हम जो दूल्हा और दुल्हन है, आज हमने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया कि चौक में बैठ के शादी करके संदेश देने का राष्ट्र को, समाज को। ये मराठा सकल समाज ने हमारे लिए आज बहुत कुछ किया है, इसके लिए हम बहुत ही दूल्हा दुल्हन आनंदित है। आज सर जी, आज वहाँ हमने मंगलाचरण के बोले और शादी का विधि किया। एक मराठा लाख मराठा ये घोषणा दी वहाँ पे समाज ने, हमारे हमें दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिए।
गुरुवार को मराठा संगठनों का महाराष्ट्र बंद कुल मिलाकर पहले के मुकाबले शांतिपूर्ण रहा। अधिकतर जगहों पर शिक्षा संस्थान, बाजार, पेट्रोल पंप और दफ्तर बंद रहे, यानी छुट्टी वाला माहौल दिखाई दिया। हालांकि कई स्थानों पर बसों और दफ्तरों पर पथराव की घटनाएं भी हुई। इसके अलावा सड़कों पर टायर जलाना, यातायात में बाधा पहुंचाना और ट्रेन रोकने के प्रयास, इन जैसी घटनाएं भी देखने को मिली। पुणे के जिलाधिकारी कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना हुई और पुणे शहर के ही चांदनी चौक इलाके में पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। नागपुर के कुछ इलाकों में मराठा समाज की कुछ महिलाओं ने सड़कों पर जुलूस निकाला और दुकानें बंद करवाईं। अफवाहों पर रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर कुछ शहरों में इंटरनेट सेवाओं को स्थगित किया गया। इनमें औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे और सांगली जिलों का समावेश भी रहा। सांगली के व्यवसायी शशिकांत कामले ने बीबीसी को बताया,
हमारे जैसे लोग जो है वो तो पूरा इंटरनेट के ऊपर ही काम करते हैं। 60% 70% काम तो बंद ही है, बाकी जो फिजिकली इंटरेक्ट करके कुछ चोरी है थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन वो भी निग्लिजिबल के हिसाब से है। छुट्टी एंजॉय कर ही नहीं सकते सर, क्योंकि हर एक के मन में डर है कहीं बाहर हम चले जाएंगे कुछ अनुचित प्रकार हो जाए, इसलिए ऑलमोस्ट सारे फैमिलीज जो है वो तो घर में ही है, तो एंजॉय करने का सवाल ही नहीं है सर।
बंद के दौरान महाराष्ट्र पुलिस का व्यवहार काफी संयमित रहा। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसी वर्ष नवंबर तक मराठा आरक्षण के लिए जरूरी कानूनी कार्रवाई निपटाने की बात कह चुके हैं, लेकिन कुछ मराठा संगठन अब भी दबाव बनाए रखने के पक्षधर हैं। बताया जा रहा है कि इसी महीने स्वतंत्रता दिवस के अगले ही दिन मराठा संगठन फिर से महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर सकते हैं। नागपुर से संजय रमाकांत तिवारी, बीबीसी।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब चीन पर हमारी विशेष श्रृंखला। काम और बेहतर मौकों की तलाश में लोग कहां कहां नहीं पहुंचते हैं। भारतीय सिख दुनिया के कोने कोने में जा पहुंचे हैं। साल 1884 में कुछ सिख चीन के शंघाई शहर पहुंचे। शंघाई के रहने वाले छाओ यिन बीजिंग के शिंघुआ विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय इतिहास और भारत चीन संबंधों के बारे में पढ़ाते हैं। पिछले साल उन्होंने शंघाई के सिखों पर एक किताब लिखी, फ्रॉम पुलिसमैन टू रिवोल्यूशनरीज, सिख डायस्पोरा इन ग्लोबल शंघाई। विनीत खरे ने बीजिंग में उनसे बात की, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
ये किताब उन सिखों की कहानी है जो शंघाई पहुंचे, कैसे उन्हें शंघाई पुलिस फोर्स में नौकरी मिली और किन परिस्थितियों में उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शंघाई छोड़ना पड़ा। छायो यान कहते हैं,
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ द सिख्स दैट केम टू शंघाई नॉट डायरेक्टली।
रोचक बात यह है कि सिख शंघाई में 1884 में आए और वो पंजाब से नहीं हांगकांग की पुलिस फोर्स से वहां पहुंचे। उन्हें ब्रितानी अधिकारियों ने शंघाई में पुलिसमैन और वॉचमैन की नौकरी दी थी। शुरुआत में ब्रितानी सरकार सिखों को पंजाब से हांगकांग लेकर गई थी, लेकिन बाद में सिख खुद अपने पैसे खर्च करके वहां पहुंचने लगे थे।
छायुयान के मुताबिक एक वक्त था जब शंघाई में करीब 2500 सिख रहते थे, लेकिन आज उन्हें ढूंढने पर भी शंघाई में सिख नजर नहीं आते। ऐसा क्यों है, इस सवाल का सीधा जवाब उनके पास भी नहीं था। सिंगापुर में सिखों की एक बड़ी जनसंख्या देखकर उन्होंने शंघाई, सिंगापुर और हांगकांग सिख समुदाय के बारे में किताब लिखने का सोचा। शंघाई के स्थानीय लोगों ने जब सिखों को अपने शहर में पुलिस वालों की वर्दी में देखा तो उनकी प्रतिक्रिया मिलीजुली थी।
अंग्रेजों को लगा कि शंघाई के स्थानीय लोग सिखों की पगड़ी, लंबी दाढ़ी, अजीब से दिखने वाली वेशभूषा से डरते थे। उधर कई लोगों ने इन सिख पुलिस वालों का स्वागत किया क्योंकि वो चीनी पुलिस वालों से कम भ्रष्ट थे।
किताब के मुताबिक चीन के अपराधी चीनी पुलिस कर्मियों से नहीं डरते थे, उन्हें नीची निगाह से देखा जाता था और यहाँ तक कि उनकी बेइज्जती भी की जाती थी। साल 1880 के आसपास शंघाई में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश आपस में सहयोग कर रहे थे। ये दौर ओपियम युद्ध के बाद का दौर था, जब मुख्य रूप से ब्रितानी, फ्रेंच और अमेरिका के साथ लड़ाई में हार के बाद चीन को विजयी सेनाओं को आर्थिक रियायतें देनी पड़ी थी। धीरे धीरे शंघाई में सिखों की संख्या बढ़ने लगी। इसका कारण यह भी था कि पंजाब और पंजाब के बाहर संदेश गया कि शंघाई में सरकार दूसरी जगहों के मुकाबले बहुत अच्छे पैसे दे रही है।
शुरुआत में सिख शंघाई में ब्रिटिश सरकार के वफादार थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति बदली, खासतौर पे कोमागाता मारू की घटना के बाद। साल 1914 में हांगकांग से कनाडा पहुंचे जापानी स्टीमशिप कोमागाता मारू को वैंकूवर में घुसने नहीं दिया गया और उसे वापस भारत लौटा दिया गया। इस स्टीमशिप में कई सिख थे। इससे सिख काफी नाराज हुए और कई सिख सैन फ्रांसिस्को के गदर आंदोलन में शामिल हो गए। सैन फ्रांसिस्को और पंजाब के बीच सीधा शिपिंग संपर्क नहीं होने के कारण शंघाई आंदोलनकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया।
गदर आंदोलन का मकसद था भारत से ब्रितानी शासन को उखाड़ फेंकना। किताब में एक बुद्धा सिंह का जिक्र है जिन्हें छायुयान ने अपनी किताब में शंघाई पुलिस फोर्स में सबसे प्रभावशाली सिख बताया है, लेकिन किताब में बुद्धा सिंह की कोई तस्वीर नहीं है। एक रिटायर्ड सिख पुलिस कर्मचारी ने 6 अप्रैल 1927 की सुबह बुद्धा सिंह की हत्या कर दी। साल 1941 में जापान ने चीन पर आक्रमण करके शंघाई पर कब्जा कर लिया, जिससे शंघाई पर ब्रितानी असर खत्म हो गया।
शंघाई में सुभाष चंद्र बोस भी आए और यहाँ सिखों से बात की। उन्होंने सिखों को इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सिखों से वादा किया कि वो उन्हें वापस भारत लेकर जाएंगे।
साल 1949 में एक बार फिर शंघाई की स्थिति बदली और शहर पर चीनी राष्ट्रवादियों का कब्जा हो गया।
1949 में कम्युनिस्टों ने शंघाई शहर पर कब्जा कर लिया। उस वक्त चीन में राष्ट्रवाद की जबरदस्त लहर थी और वो कभी भी भारतीयों या सिखों को पुलिस वालों के तौर पर नौकरी नहीं करने देते। इसलिए सिखों के पास यहाँ कोई नौकरी नहीं रही और उन्हें शंघाई छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जाना पड़ा।
और यही है शंघाई में सिखों की कहानी। विनीत खरे, बीबीसी, बीजिंग, चीन।
चीन पर हमारी विशेष श्रृंखला आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम में आपकी राय।
आपकी राय लेके हाजिर हूँ मैं मुकेश शर्मा।
और मैं हूँ सूर्यांशी पांडे।
आज आपकी चिट्ठियों के साथ सूर्यांशी हमारे साथ हैं। तो सूर्यांशी, ये बताइए किन किन विषयों के बारे में हमारे श्रोता बात कर रहे हैं।
सबसे पहले मुकेश जी, हम ये पोस्ट कार्ड लेना चाहेंगे जो भेजा है कर्मी राम प्रजापत ने जालोर राजस्थान से, और ये लिखते हैं कि संदीप सोनी जी के द्वारा पाकिस्तान के वोट पर जो प्रस्तुति थी वो बेहद पसंद आई उन्हें, और सरप्रिया सांगवान के द्वारा जो रिपोर्ट की गई थी उससे वो बहुत ही प्रसन्न है और बहुत कठिन जगह पर वो रिपोर्ट की गई थी।
जी, कर्मी राम जी को दोनों ही प्रस्तुतियां अच्छी लगी। ये बहुत ही खुशी की बात है पाकिस्तान को लेकर के। बीबीसी हिंदी की हमेशा ये कोशिश रही है क्योंकि वहां पर भारतीय पत्रकार उस तरीके से नहीं है जो रिपोर्ट कर सके, तो बीबीसी उर्दू सेवा के जरिए एक सही तस्वीर लोगों के सामने रखी जा सके। इसी तरह सर्वप्रिया सांगवान ने जो जादूगोड़ा पे रिपोर्ट की है वो एक बहुत ही लोगों से जुड़ा हुआ एक अहम मसला है जो उठाया जाना चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि कर्मी राम जी को ये रिपोर्टें अच्छी लगी।
हाँ। मुकेश जी, एक श्रोता ने आलोचना की है, उन्होंने, वो अरविंद नाम है इनका और पुणे से ही लिखते हैं। इनका ये कहना है कि पूरे हिंदी कार्यक्रम में अब उर्दू का इस्तेमाल ज्यादा होता है, पुराने बीबीसी की शुद्ध हिंदी कहीं लुप्त हो रही है।
अरविंद जी, भाषा को लेकर के हम जिसको हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है वो अपनाते हैं, और कभी भी बोलचाल में भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल लोग विशुद्ध हिंदी या विशुद्ध उर्दू का इस्तेमाल करते हों। मिली जुली भाषा इस देश की पहचान है, और उसी भाषा की पहचान को, भाषा सहज रहे, सरल रहे और आम लोगों को समझ में आ सके, बीबीसी हिंदी उसी भाषा को, जो जनसंचार की भाषा है, वो अपनाती है। इसलिए कोई विभेद नहीं है कि जानबूझकर कोई नहीं ऐसा काम है कि हिंदी ही रखनी है या उर्दू ही रखनी है, जो आम बोलचाल की भाषा है वही बीबीसी हिंदी की भाषा रखते हैं।
और अब अगर हम मेल पर पहुंचे तो मेल में सबसे पहले हम लेते हैं गौतम दत्ता के मेल, जो बिहार बहादुरगंज किशनगंज से लिखते हैं, और इन्होंने कहा है कि चीन से की जा रही विनीत खरे की रिपोर्टिंग बहुत ही उन्हें अच्छी लग रही है, और 7 अगस्त शाम के प्रोग्राम में मोहनलाल ने करुणा निधि के प्रयाण की समाचार को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी दिलकश आवाज ने करुणा निधि के जाने का गम मानो हल्का कर दिया हो।
जी, अच्छी बात है कि उन्हें हमारी, गौतम जी को हमारी रिपोर्टें अच्छी लग रही हैं। चीन से विनीत की जो सीरीज थी, जरूर हम चाहेंगे कि श्रोता बताएं कैसी लगी, क्योंकि चीन में आम तौर पर पत्रकारों की पहुंच उस तरह से नहीं होती है, और विनीत ने वहां जाकर के ये रिपोर्टें की हैं। साथ ही मोहनलाल जी, जिस तरह से हम जानते हैं करुणा निधि जी के जाने के साथ ही एक, जैसा कहा जा रहा है, चर्चा हो रही है कि तमिल राजनीति के एक अध्याय की समाप्ति हुई है, तो वो उसी तरह से हमारी कोशिश थी कि हम श्रोताओं तक उसकी अहमियत के साथ वो खबर पहुंचा सकें।
ये जो दूसरा ईमेल है, इसका मुझे लगता है मुकेश जी इनका प्रोत्साहन इनका बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनकी एक शिकायत है कि इन्होंने 25वां मेल ये भेजा है, और अगर इस बार ये शामिल नहीं हुआ तो उन्हें बेहद दुख लगेगा, तो इसलिए उनका ये मेल शामिल करना बेहद जरूरी था। नाम है इनका अर्जुनदन चरण, और इन्होंने कहा है कि दुनिया जहां की प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन हो रही है।
चलिए, अच्छा है कि आपको दुनिया जहां कार्यक्रम पसंद आ रहा है, और सिर्फ ये कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूं इसलिए शामिल हो जाए, चिट्ठी में जैसे हम सुनते हैं, मतलब कार्यक्रम को लेकर अगर आपकी कोई खास प्रतिक्रिया है, आप सुधार किसी एक विशेष चीज पर करवाना चाहते हैं, या आपको कोई चीज पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही, उन चिट्ठियों को आमतौर पर आप सुनते ही होंगे, जब भी चिट्ठियां आती हैं उनकी चर्चा ज्यादा होती है, तो उन्हीं विषयों पे चर्चा करें। इसी के साथ आपकी राय का ये समय अब समाप्त होता है, और चलने से पहले श्रोताओं को एक बार अपना पता बता दें। आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो आपने अपनी भेजी हुई चिट्ठियां भी सुन ली, और अब खेल समाचार भी सुन लेते हैं। ज्योतिका सिंह स्टूडियो मौजूद हैं। ज्योतिका
जी, शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में शुरू होने से पहले ही बारिश के साए में आ गया। मैच से कुछ घंटों पहले ही बारिश शुरू हो गई थी, और मौसम में थोड़ी ठंडक भी बताई जा रही है। अभी तक बारिश के चलते टॉस भी नहीं हो पाया है। इस मुकाबले पर सबकी नजरें पहले ही थी, और अब तो और बढ़ेंगी, क्योंकि मौसम के बदलते 11 खिलाड़ी कौन होंगे ये अभी तक सिर्फ कप्तान को ही मालूम है। स्पिनर्स भी कितने आएंगे, 1-2, ये भी कहना मुश्किल है। अब बात बैडमिंटन की। भारतीय शटलर अजय जयराम और ऋतु पूर्णा दास ने कल $75,000 इनामी वियतनाम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जयराम ने इंडोनेशिया की गतराज पिलियांग को 21-7, 21-16 से हराया। उनका मुकाबला अब शीर्ष वरीयता प्राप्त ब्राजीली इगोर कोलहो से होगा, जिन्होंने भारत के सिरिल वर्मा को एक संघर्षपूर्ण मैच में 22-20, 17-21, 21-17 से हराया। महिला एकल में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन ऋतु पूर्णा दास ने जापान की शिओरी साइता को 21-13, 21-14 से हराया। जाने से पहले बात अंडर-16 फुटबॉल की। भारत की अंडर-16 फुटबॉल टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। जॉर्डन के अमान में चल रही 5 देशों की WAFF अंडर-16 चैंपियनशिप में यमन की मजबूत टीम को 3-0 से करारी शिकस्त दी।
बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिका, और कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी यमन में स्कूली बस पर हुए हमले के कारण 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई घायल हैं। एनडीए के उम्मीदवार और जीडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को मतदान के जरिए आज राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया। उन्हें 125 वोट मिले जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले। अमरीका के नए प्रतिबंधों की निंदा करते हुए रूस ने कहा है कि इंग्लैंड में पूर्व रूसी जासूस पर नर्व एजेंट हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। आज स्टूडियो संभाला कपिल देव सिंह ने। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।